ओम शांति। अभी आज के शाम के समय विशेष आदरणीय रामलोचन भाई जी हम सबके समक्ष में विशेष टॉपिक स्वस्थिति से हम परिस्थितियों को कैसे पार कर सकते हैं। आजकल की दुनिया में हम सबको समस्याएं परिस्थितियां परीक्षाएं आते ही रहते हैं, लेकिन बाबा हम लोगों को समान स्वस्थिति दिया है, इसलिए रामलोचन भाई जी अपना अनुभव से हम सबके समक्ष स्वस्थिति से परिस्थिति के ऊपर कैसे पार कर सकते हैं उसके बारे में हम सबको अपना अनुभव बताएंगे। रामलोचन भाई जी शांतिवन में विशेष सेवा पर उपस्थित है। आपका लौकिक जन्म राम की नगरी अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ है। आप 50 वर्षों से मधुबन में सेवा पर उपस्थित है। वर्तमान समय शांतिवन के वीआईपी डाइनिंग हॉल में अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं और रामलोचन भाई जी कई कॉन्फ्रेंस सेमिनार राजयोग शिविर में भी क्लास किए हुए हैं, हजारों भाई बहनों को लाभान्वित किए हैं। आप भारत के मुख्य मुख्य स्थानों में भी ईश्वरीय सेवार्थ गए हैं और रामलोचन भाई जी जैसे लक्ष्मण राम को फॉलो किया ऐसे भाई जी अपना निराकार राम जी को विशेष प्रत्यक्षता में अपना सेवा अर्पण किया है। रामलोचन भाई जी आपके व्यवहार में नम्रता शालीनता उदारता की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। हम आदरणीय रामलोचन भाई जी को करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। भाई जी को स्वागत है, शिव स्वागत है, शुभ स्वागत है। ओम शांति।
ओम शांति। आप सभी बाबा के श्रीमत अनुसार स्वयं को उसी रास्ते पर चलाते हुए बाबा से शक्ति लेते हुए विजयी रतन बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा आया ही है, हम आप आत्माओं को विजयी बनाकर अपने साथ घर ले जाएगा, फिर ब्रह्मा बाप के साथ सतयुग में राज्य करेंगे। तो जब ब्राह्मण बनते हैं, बाबा आत्माओं को अपना बनाता है, उसी पल से माया आपकी दुश्मन बन जाती है। पहले हम दुश्मन के साथ थे, इसलिए दुश्मन नहीं समझते थे, लेकिन जब बाबा ने हम आप सबको यथार्थ परिचय दिया, तब पता पड़ा कि माया हमारा दुश्मन है और उससे अपना किनारा करने की कोशिश करने लगे। लेकिन जब हम आप उससे किनारा करके बाबा से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने कई प्रकार की परिस्थितियां माया लाती है और उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की विधि बाबा ने बताई है। सो स्थिति, सो स्थिति से पर स्थिति पर विजय मिलती है। अभी सो स्थिति का आधार क्या है? आत्मा की सो स्थिति बने कैसे? सो को तो जान लिया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मक स्वरूप में अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित रहें, उसके लिए बाबा ने तीन बातें बताई है। पहली बात है कि आत्मा अपने आप को आत्मक स्वरूप में लाने के लिए जो आत्मा की चार स्थितियां हैं, उन चारों स्थितियों का भिन्न भिन्न समय पर अभ्यास। दूसरी बात है कि आत्मा अनादि और आदि स्वरूप में आत्मा किस स्थिति में थी, उस स्वरूप का अभ्यास। तीसरा, निरंतर बाप की याद में रहने का अभ्यास। ये तीन बातें अगर आप करते रहो तो सो स्थिति बनने में मुश्किल नहीं है। लेकिन हमारे सामने परिस्थिति होने के कारण ये करने में मुश्किल लगता है। अब ये बताते हैं कि परिस्थितियां कौन सी हैं, फिर क्लियर करते हैं सो स्थिति बनाने की विधि। परिस्थितियां बहुत हैं, लेकिन मुख्य रूप से पांच प्रकार की परिस्थिति है। सबसे पहला है अपने पुराने संस्कार। पुरुषार्थ बढ़ाते ही पुराने संस्कार बिघन डालते हैं। दूसरा है शारीरिक कर्म भोग। तीसरा है लौकिक परिवार वालों के द्वारा विघन। चौथा है ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिसाब किताब सामने आना। पांचवा है प्रकृति के द्वारा विघ्न। और छठा है जो किसी किसी को है, सबको नहीं है, वो है इविल सोल के द्वारा विघ्न। क्योंकि बाबा ने बताया है मुरली में, अंत में जिसके साथ हिसाब किताब है उसमें आत्मा प्रवेश करेगी। इविल सोल का रूप क्या है? इविल सोल प्रवेश किया है या कर रही है, उसका बाबा ने बहुत सुंदर क्लियर किया है। 72 की मुरली में, मुरली की हेडिंग है बिंदु रूप स्थिति का महत्व। उसमें बाबा ने इविल सोल के बारे में बताया था कि जब इविल सोल प्रवेश कर रही है, किया नहीं है लेकिन आती है, तंग करके चली जाती है, उसकी निशानी बताई थी कि जिसके अंदर एविल सोल आती है तो सबसे पहले वो आत्मा अपनी बात पर, क्या कहेंगे, जैसे कि वो हो जाता है कि मैं जो कहूं वही सत्य है, मेरी ही बात मानी जाए। एक ये आता है, एक निशानी। दूसरी निशानी बाबा ने बताया कि जब उस आत्मा को बताओ ऐसी तो बात है नहीं, तो सेकंड में अपनी बात बदल देगी, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं, सेकंड में बदल देगी। तीसरी बात, जो भी बात कहेगी वो बड़े आदेश से बहुत जोर देकर कहेगी कि मेरी बात ये राइट है, आपको मानना ही पड़ेगा। ये है इविल सोल की प्रवेशता। हुई नहीं है लेकिन प्रवेशता हो रही है। वो समस्य है जिसमें आई है, वो समझते मैं राइट कह रहा हूं लेकिन होता सब परबस है, वो सोल के अधीन है। इससे बचने के लिए बाबा ने बताया था कि जब ऐसी परिस्थिति देखो तो इस से बचने का साधन है या तो बिंदु रूप स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त बाप दादा के साथ रूह रिहान करके उस बात को क्लियर कर दो, और अगर अव्यक्त स्थिति नहीं बना पाते हैं उस समय, तो निमित्त बनी हुई आत्मा से राय लेकर के फिर वो जैसा कहते हैं वैसा करें, तो एविल सोल से बच जाएंगे। जिसमें प्रवेश हो रही है हुई नहीं है, और जिसमें हो गई है उसके लिए बाबा ने 84 के मुरली में बताया था, उसमें है ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म दिव्य जन्म, मुरली की हेडिंग है। इसमें बाबा ने स्पष्ट किया है कि अगर प्रवेश हो तो ब्राह्मण आत्मा में किसी में तो कैसे उसको हटाया जा सकता है। तो अंत में जिसका हिसाब किताब है उनमें ये प्रवेश करेगी। इसलिए अभी से बिंदु रूप स्थिति का अभ्यास बढ़ाते चले तो आप इससे सेफ रहेंगे, क्योंकि हम सबको किसी को भी पता नहीं है कि किस आत्मा का किसके साथ क्या हिसाब किताब है। लेकिन बाबा के बताए हुए श्रीमत के अनुसार चलते रहेंगे तो विजय मिल जाएगी। आप बता रहे सो स्थिति कैसे अपनी बने, तो सो स्थिति का आधार पहले आपको बताया था, आत्मा की चारों प्रकार की स्थितियों का अभ्यास अलग अलग समय पर। वो चारों स्थिति है देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी, तीसरा है विदेही और चौथा है अशरीरी। अशरीरी ये चार आत्मा की स्थितियां अलग अलग है, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी। ये चारों स्थितियों का अभ्यास क्या समझते हैं सभी, चारों एक ही है या अलग अलग है, क्या कहेंगे पांडव, चारों एक ही है या अलग अलग है? शक्तियां, अच्छा चारों अलग हैं। पहला है देही अभिमानी। देही अभिमानी अर्थात जब आप कोई भी कर्म कर रहे हैं तो मैं आत्मा देह का आधार लेकर इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूं, मैं आत्मा लेकिन कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म कर रही हूं, ये है देही अभिमानी देह है और आधार लेकर कर्म कर रही हूं तो उसमें देह भी याद आएगी। ऐसे नहीं कि देह नहीं याद आएगी, लेकिन कॉन्शियस है कि मैं आत्मा हूं। और जब ये अभ्यास आपका बढ़ते 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 टॉप स्टेज पर पहुंच जाएगा, अर्थात फुल देही अभिमानी बन जाएंगे, कर्मातीत की स्थिति नजदीक आ जाएगी, तब आपकी स्थिति बन जाएगी कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों को आर्डर प्रमाण चला रही हूं। चलाने वाला अलग है, चलने वाला अलग है। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग अनुभव होंगे। पहली है इंद्रियों का आधार है और लास्ट है अलग का अनुभव होना, जिसका बाबा ने मिसाल दिया था गुलाब का फूल। देही अभिमानी स्थिति है कमल का फूल और अंतिम स्थिति है जिसको उपराम स्थिति कहते हैं, ये है गुलाब का फूल। कमल के फूल की विशेषता समझते हैं, सबके साथ रहते हुए भी न्यारा। गुलाब के फूल की क्या विशेषता है जो और किसी फूल में नहीं है? क्या विशेषता है? तीन विशेषता सुनाओ जो और फूलों में नहीं है। कांटे सभी फूलों में होते हैं, सुगंध सभी फूलों में होती है, इसके अलावा सुनाओ जो गुलाब के फूल में है वो और किसी के फूल में नहीं है। अच्छा, पहली विशेषता है कि गुलाब का फूल जब कंप्लीट खिल जाता है तो उस फूल को ऐसे ही करो तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं फूल के, होता है ना ऐसा। अर्थात वो आत्मा सबके साथ रहते हुए, सबके साथ रहते हुए कर्म पूरा किया, फिर इन सब से न्यारी अपने वतन अपने घर, चाहे सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास, चाहे मूल वतन में अपने स्वीट साइलेंस स्वीट बाबा के साथ स्थित हो जाती। दूसरा गुलाब के फूल की विशेषता है, आपने देखा होगा कि सभी फूलों पर कीड़े बैठते हैं, मधुमक्खियां बैठती हैं, लेकिन गुलाब के फूल पर कोई कीड़ा नहीं बैठती, मधुमक्खी नहीं बैठती। अर्थात वो सबके साथ रहते हुए सबसे न्यारा है। कोई एक से न्यारा नहीं, सबसे न्यारा और प्यारा है तो सबका प्यारा है। और तीसरी गुलाब के फूल की विशेषता होती है कि जब सब पंखड़ियां झड़ जाती हैं तो बीच में बूर बचता है, इतना जहां उसका फल लगता है वो बचता है। अर्थात वो सदा आत्मक स्थिति में स्थित रहता है, इस भान से परे रहता है। लास्ट में वो स्थिति आ जाती है, वो स्थिति लानी है। अभी तक हमारी सत की स्थिति कोई तो पार हो गए होंगे, अभी तक है कमल फूल वाली स्थिति। योग लगता है टूटता है, लगाते हैं टूटता है। जैसे सब्जी बनाओ तो लगती है छुड़ाओ, लगती है छुड़ाओ, ऐसा चलता है। लेकिन बनना है एकदम उपरां। तो किसी ने एक ने प्रश्न किया था कि आजकल तो ऐसा साधन निकला है जो सब्जी लगती नहीं है, तरा पकड़ता ही नहीं है, पता नहीं क्या कहते हैं, कौन सा कुकर तवा कहते हैं, तो चिपकता नहीं है, है ना ऐसा, जिस पे डोसा वगैरह बनाते हो चिपकता नहीं है, उसमें पता नहीं क्या कहते हैं। तो बाबा ने इसका जवाब दिया था कि जब ये एग्जाम्पल दिया था बाबा ने, तब शुरू का समय था। अब तो ज्ञान योग इतना स्पष्ट हो गया है, आपके सामने इतना ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, सैंपल हैं, अब तो आपको चिपकना ही नहीं चाहिए। अगर अभी चिपकते हैं तो माना ज्ञान योग को अपने जीवन में लाया नहीं है अभी तक। तो एक है देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी। जब आप बाबा की याद में बैठते हैं तब आत्मा को इस शरीर के स्मृति की आवश्यकता नहीं है, कर्म में इसकी स्मृति आएगी। लेकिन जब योग में बैठते हैं तो इसको भूल कर, सब कुछ भूल कर, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, बस आत्मा समझ कर बाबा को याद करना, ये है आत्म अभिमानी। तीसरा है विदेही। विदेही अर्थात आप जब कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बैठे हैं या चल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो कोई न कोई स्वमान बुद्धि में जरूर रखो। मैं आत्मा शिव शक्ति हूं, शिव शक्ति समझ कर बात करो। मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूं, मतलब जो बाबा ने स्वमान दिया है, किसी न किसी स्वमान में स्थित रहो। तो स्वमान देह भान को मिटा देगा। और चौथा है अशरीरी। जब आप आत्मा परम धाम में हैं, तो वहां शरीर नहीं है। आप देखो, थोड़ा टाइम है तो शरीर से भी इस दुनिया को सबको भूल कर परम धाम में अपने बाबा के पास ज्योतिर्बिंदु बाबा, ज्योतिर्बिंदु मैं आत्मा, यही मेरा घर है, बाबा ही हमारा संसार है, वहीं स्थित हो जाओ। ये बीच बीच में जैसा टाइम मिले आप डेड साइलेंस का अभ्यास करो। ऊपर से बाबा के पास बैठकर नीचे का संकल्प करो कि ये शरीर मरा पड़ा है, मैं आत्मा बाबा के पास बैठी हूँ, वहां से इसको देखो। फिर संकल्प करो, अभी मैं आत्मा परम धाम से उतरकर सूक्ष्म वतन होते हुए शरीर में प्रवेश किया है, शरीर का आधार लिया है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। ये जितना अभ्यास आप करोगे, एक तो आपका विक्रम होल सेल में विनाश हो जाएगा, दूसरी बात ये अभ्यास आपको अंत में ये शरीर छोड़ने में बहुत मदद देगा। सहज इस शरीर को अपनी स्व इच्छा से छोड़ देंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने छोड़ा था। तो ये अभ्यास करो तो आत्मक स्वरूप में टिक जाएंगे। सिर्फ मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, सिर्फ यही अगर सोचते रहोगे तो आत्मक स्थिति बन नहीं पाएगी। ये चारों स्थितियों का जैसा समय उस स्थिति का अभ्यास करो। दूसरी बात है आत्मक स्थिति में अपने अनादि और आदि स्वरूप को बार बार सामने लाओ। जब मैं आत्मा परम धाम में थी, बाबा के पास थी, तो कितनी मुझ आत्मा में चमक थी, कितनी मैं आत्मा शक्तिशाली थी, कितनी मुझ आत्मा में लाइट थी। ये ऐसे अनादि स्वरूप का अभ्यास करो, फिर आप अनादि से परम धाम से अपने आदि स्वरूप देव स्वरूप में आत्मा आई है। जब मैं आत्मा देव स्वरूप में हूं, उस समय हमारी आत्मक स्थिति कैसी थी, हमारा शरीर कैसा था, हमारा व्यवहार कैसा था, हमारा राज्य कैसा था, वो सब स्मृति में लाओ स्वर्ग को। तो जितना ये स्मृति में लाओगे, उतना यहां से उपराम होते जाओगे और दैवी गुण खींचने लगेगा। अभी दैवी गुण धारण करने में मेहनत लगती है, तब मेहनत नहीं लगेगी, तब दैवी गुण खींचेगा। हां करें, धारण करें, अच्छा लगेगा। और तीसरी बात है, आत्मक स्थिति के लिए निरंतर बाप की याद, वो तो आप अभ्यास कर रहे हो, जानते भी हो और करते भी चल रहे। किस प्रकार से कईयों की बाबा को याद करने की जो आदत है, विधि जो समझा है, वो उसी एक ही विधि से वो बाबा को याद करते नहीं। रोज मुरली में जिस विधि से बाबा कहता है, उस विधि से उस दिन याद करो। ये है आज्ञा की पालना। इससे भगवान की आपको शक्ति मिलेगी। जैसे दो दिन पहले बाबा की मुरली में आया था कि भक्त में भगवान को ऊपर याद किया, अभी भगवान नीचे यहां आया हुआ है, ब्रह्मा के तन में आया हुआ है, अभी बाबा को यहां याद करो और इनके साथ ब्रह्मा को भी याद करना पड़ेगा। अब अगर ऐसा नहीं किया आपने, तो उस दिन भगवान के आज्ञा की अवज्ञा की। आप कितना योग अपने विधि से लगाने की कोशिश करो, लेकिन भगवान की मदद नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, भगवान के बताए हुए विधि से नहीं। अगर भगवान के बताए हुए विधि से करते तो बात की दुआ भी मिलती, आशीर्वाद भी मिलता, शक्ति भी मिलती। तीनों चीज मिलता, दुआ और आशीर्वाद, इन दोनों में क्या अंतर है? शायद कर्नाटक में तो दोनों एक को ही कहते हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? दुआ और आशीर्वाद, दुआ दिल से निकलती है, दुआ दिल से निकलती है, आशीर्वाद मुंह से निकलता है। अंतर, आप कोई किसी को भी प्रणाम करे तो जरूर कुछ ना कुछ रिटर्न में बोल देगा, चाहे मन में हो या ना हो, लेकिन बोलना ही पड़ेगा। चाहे रूखा सूखा बोले, हाँ खुश रहो खुश रहो खुश रहो, ऐसे कह देगा, लेकिन बोलेगा जरूर। लेकिन दुआ दिल से निकलती, इसलिए माँ बाप की दुआ का गायन है। क्योंकि वो जो कुछ भी देते हैं लौकिक में भी दिल से देते हैं। तो जो चीज दिल से दी जाती है वो चीज अपना काम जरूर करती, और जो चीज ऊपर से सिर्फ है वो सिर्फ मन को खुश करती है, बस काम नहीं करती। तो आप जिस दिन मुरली में जैसा बाबा कहे उस तरह से याद करो तो आत्मक स्थिति आपकी सहज बनती जाएगी। क्योंकि बताया कि दुआ, आशीर्वाद और शक्ति तीनों मिलेगी। अब आत्मक स्थिति अगर पक्की और शक्तिशाली हो गई तो परिस्थिति पर विजय सहज हो जाए। पहले बताया पुराना संस्कार, पुराना संस्कार हमको सबसे ज्यादा पुरुषार्थ में विघन डालता है, सबको अनुभव है। अब देखा जाए तो पुराना संस्कार है कहां से? इस बॉडी कॉन्शियस से। क्योंकि जब अपने को शरीर समझते हैं तो जो द्वापर से समझते आए हैं वही प्रकट हो जाता है, अर्थात उसी चीज का बीज बोया। और जब अपने को मरजीवा समझो, हम ब्राह्मण हैं, तो पुराने संस्कार वार नहीं, ब्राह्मण है, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले मुरली में आया था कि अभी तक फुल कास्ट ब्राह्मण बने नहीं हो। ब्राह्मण बने हो लेकिन फुल नहीं बने हो, क्योंकि फुल कास्ट ब्राह्मण का अर्थ ही है ब्रह्मा बाप के कदम पिछाड़ी कदम। अगर ब्रह्मा बाप के कदम पिछाड़ी कदम नहीं है तो कुछ अपना मत है, कुछ बाबा की मत है, फुल कास्ट नहीं कहा। और अगर फुल कास्ट नहीं तो ये जो गायन है अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में ये प्रैक्टिकल होगा नहीं। आज की मुरली में शायद कल के मुरली में था कि अगर आप बाप के श्रीमत पर चलते रहो तो आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कुछ चाहिए बाबा अपने आप ही दे देगा, मांगने की भी जरूरत नहीं। लेकिन ये कब, जब पूरा श्रीमत अर्थात फुल कास्ट ब्राह्मण बनेंगे तब। तो आप सबसे पहले अपने को ब्राह्मण बनाने का पुरुषार्थ करो। ब्राह्मण का अर्थ ही है पुराने से मरकर नया बने, शरीर वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ संकल्प चेंज हुआ है कि हम सूत्र नहीं ब्राह्मण है, ईश्वरीय नियम पर चलना शुरू किया, ब्राह्मण बने। वैसे भी दुनिया में देखो जब कोई मर के नया जन्म लेता है तो 3 बातें बदलती हैं। पहली बात, परिवार बदल जाता है, माँ बाप बदल जाते हैं। दूसरा है स्थान बदल जाता है। तीसरा है स्थिति अर्थात धर्म बदल जाता है। आप बच्चे बाबा के बने, जीते जी मर के बाबा के बन गए, तो आपका सर्व संबंधी कौन हुआ? आपका कौन हुआ? बाप दादा ना, सर्व संबंधी बाप दादा हुआ ना। उसमें वो हमारा माता पिता टीचर स्वामी सखा गुरु बेटी बेटा बहू पोत्रा सब है, सर्व संबंध है। अब आप देखो अपने घर में, लौकिक घर में आपकी मान लो बेटी है, उसको आपने बेटी की दृष्टि से देखा, बेटी की स्मृति से देखा, तो क्या उस समय आप ब्राह्मण हैं? सोचो आप, परिवार के किसी भी सदस्य को लौकिक संबंध के दृष्टि से देखा तो क्या उस समय आप ब्राह्मण हैं? क्या बीके को बेटी होती है? बीके को बेटा होता है? तो जब उस समय आप ऐसा संकल्प किया तो आप उस समय क्या हैं? शूद्र ना? इसीलिए बाबा कहता है अभी हाफ कास्ट ब्राह्मण, अभी अपनी दृष्टि वृत्ति को बदलो। बेटी है, बेटी कहना पड़ेगा, लेकिन अंदर से संकल्प रहे कि नहीं, ये शिव बाबा की संतान है, ब्रह्मा बाबा की संतान है। अंदर का संकल्प रहे। जैसे आप सेंटर पर जाते हो, सेंटर पर टीचर बहने हैं तो वो भी बहने ना, लेकिन आप उनको कितना ऊंची नजर से देखते हो। इसलिए देखा कि अंदर है कि वो टीचर है, यही ना। ऐसे अंदर का भाव परिवार के प्रति भी बदलना है। सब बाबा की संतान, सब बाबा की संतान। अंदर की भावना तो कहा जाएगा आप जीते जी मरे हो। तो पहली बात, संबंध बदलता है। दूसरी बात, स्थान बदलता है। जहां से मर के जहां जन्म लिया वहां गई। ब्राह्मणों का परमानेंट एड्रेस कौन सा है? परमानेंट एड्रेस शरीर के हिसाब से मधुबन है, सभी ब्राह्मणों का। अगर आपको ये याद रहता है कि मैं कर्नाटक का हूं या मैं बेंगलोर का हूं या कहीं का ये याद रहता है, तो क्या आप मरे हो उस समय? या लौकिक दुनियावासी हो? सोचो आप, सारा दिन क्या स्मृति में रहता है? और वैसे भी कहा जाता है कि अगर किसी को पास्ट की बात याद आ जाए तो पास्ट काल को क्या कहते हैं हिंदी में? भूतकाल। तो पास्ट की बात को याद किया माना भूत आ गया। कौन सा भूत? माया का भूत, छोड़ेगा नहीं। और तीसरी बात है, स्थिति अर्थात स्थान बदलता है। आप अभी ब्राह्मण बने, अभी हमारा सबका संकल्प है कि मुझे आत्मा को 5 विकारों पर विजय प्राप्त करना ही है, संकल्प है। अगर हम 5 विकारों के बस यूज करते, मान लो घर में बच्चे ने कोई गलती की, परिवार के किसी सदस्य ने गलती की और आपने उसे डांटा, तो क्या भीखे हो उस समय? क्या जीते जी मरे हो उस समय? नहीं। क्यों डांट रहे हो? क्योंकि समझते हो मेरा बेटा है, अधिकार है उसको सुधारने का। लेकिन ये समझ नहीं है, बेटा है लेकिन सुधरेगा कैसे? क्या डांटने से? डांटने से तो और बिगड़ेगा। आप देखो लोग आजकल बच्चे की गलती देते हैं कि बच्चा बड़ा खराब है, जमाना बड़ा खराब है। लेकिन खराब बनाया किसने? आप मान लो आपका छोटा बच्चा है, वो कोई गलती करता है और आप उसे जोर से डांटते हो कि ऐसे नहीं करना। आपका लक्ष्य बड़ा ऊंचा है कि बच्चा गलती न करे, लेकिन जब आप जोर से डांटते हो कि आप ऐसा क्यों किया या नहीं करना, तो वो छोटा बच्चा सीख रहा है कि डांटा कैसे जाता है। उसको क्या पता डांटना क्या होता है? तो आपने उसे सुधारा या बिगाड़ा? सोचो। तो पहली बात, जीते जी मरो, ब्राह्मण बनो, मरजीवा बनो, इस देह भान से अपने को मुक्त करो कि मैं आत्मा या मैं जीव आत्मा या मैं ब्राह्मण आत्मा, बाप दादा की संतान हूँ, बाप दादा मुझ आत्मा का सर्वस्व है, मुझ आत्मा का संसार बाप दादा है, मुझे बाप दादा के श्रीमत पर चलना है, बाप दादा को फॉलो करना है। ये अंदर बार बार संकल्प अगर लाते रहो तो आप ये जो पुराने संस्कार हैं जो देह भान से उत्पन्न हो रहे हैं, वो पुराने संस्कार दब जाएंगे। मिट तो तुरंत नहीं जाएंगे, लेकिन दबते 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 मर्ज हो जाएंगे, दैवी संस्कार की मर्ज हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय भाई सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से प्यार करने का मतलब है उसके प्यार में खो जाना। भगवान को याद करने का मतलब है उसके प्यार भरी यादों में खो जाना। भगवान से दिल लगाने का मतलब है अपनी हिफाजत करना। भगवान को पाने का मतलब है उनके कहे गए मार्गदर्शन पर चलना। आदरणीय रामलोचन भाई साहब ने हम सबको अभी तक विशेष स्वस्थिति क्या है, आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, और परिस्थितियां कैसे आते हैं, पुराने संस्कार, माया, देह अभिमान। और भाई जी ने हम सबको देही अभिमानी भवा, शरीरी भवा, आत्मा अभिमानी भवा, और साथ साथ श्रीमत बाबा को कैसे फॉलो करना, कदम पर कदम चलना, अनेक अनेक पॉइंट्स के ऊपर हम सबको विशेष अपना जीवन का, पुरुषार्थी जीवन का अनुभव से हम सबके सामने विशेष रखा है। इसलिए आदरणीय रामलोचन भाई साहब को हम सभी करतल ध्वनि से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करेंगे। भाई साहब को बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।
चले बाबा के पास, शिव बाबा। बाबा।